Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप कितना किलो वजन उठा सकते हैं तो आप कहेंगे कि 20, 25, 50 या 100 किलो तक आप कहेंगे कि हम उठा सकते हैं। एक सत्य घटना मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक महिला अपने घर में किचन में कार्य कर रही थी। उनका 3 साल का बेटा बाहर खेल रहा था। अचानक बच्चे के जोर से चीखने की आवाज़ आई और साथ ही एक भारी वाहन के भी पलटने की आवाज़ बहुत जोर से सुनाई दी। महिला भागते हुए बाहर आए, उसने देखा कि एक भारी वाहन जिसका वजन कम से कम 250 से 300 किलो रहा होगा उसके बच्चे के ऊपर आ गया है, लेकिन बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन यदि वाहन को उठाया नहीं जाता तो बच्चे की जान जा सकती है। आमतौर पे ऐसे में ड्राइवर तो भाग ही जाता है, आसपास कोई भी नहीं था। महिला क्या करेगी? एक महिला जिसे हम अबला कहते हैं, और यदि आज मैं आपसे पूछता हूं कि आप कितना किलो वजन उठाते हैं, आप हमेशा कहेंगे कि 20, 25, इससे ज़्यादा शायद आप नहीं कहेंगी। लेकिन आश्चर्य होगा आपको कि उस महिला ने उस भारी वाहन को तब तक उठाकर रखा जब तक कि उसका बच्चा उस वाहन के नीचे से सुरक्षित बाहर नहीं आ गया। कहाँ से आई ये शक्ति? वास्तव में हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ निहित हैं, लेकिन हम उसे जागृत नहीं कर पा रहे हैं, हम उसे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। यदि इन शक्तियों को हम यूज़ करें तो शायद हमारे पास कोई समस्या रहेगी ही नहीं। इसीलिए हम मेडिटेशन की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। तो आइए इस सुंदर चर्चा की, इस सुंदर बात के साथ प्राता जी के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। प्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
शुक्रिया।
जब कभी हम मेडिटेशन की बात करते हैं प्राता जी, तो कई बार ऐसी आश्चर्यजनक बहुत घटनाएं सुनने को मिलती हैं जिसके बारे में लगता है कि सचमुच इतनी शक्तियां हमारे पास हैं लेकिन हम उसे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। कैसे हम उन शक्तियों को यूज़ करें, यही चर्चा वास्तव मेडिटेशन के साथ साथ हम आपके साथ कर रहे हैं।
हाँ, एक बहुत अच्छा अनुभव कल मेरे पास आया
जी।
कोई बहन मेरे पास आई तो उसमें ऐसा तांत्रिक प्रयोग लोगों ने कराया जिसे सुन के मुझे भी आश्चर्य हुआ। 3 बार मारक मंत्र का उस पर प्रयोग किया। मारक मंत्र को मूठ कहते हैं लोग, और इससे कोई भी बच नहीं पाता। अगर बच जाए तो ये मूठ सीधी मारने वाले पे चली जाती है,
मतलब खाली नहीं जाती।
खाली नहीं जाती। 3 बार कराया, 3री बार उसे हुआ कोई उसका गला दबा रहा और सेकंड में वो समाप्त हो गया। उसको कोई हानि नहीं हुई। तो जो कराने वाले थे वो पड़ोस के ही थे लोग, जो उनसे चिढ़ते थे वो अपने गुरु के पास पहुंचे जिससे करा रहे थे। कहा, गुरुदेव ये 3 बार मारक मंत्र आपका फेल हो गया। उसने कहा, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, उसकी सुरक्षा तो कोई बड़ी शक्ति कर रही है, मुझे उसके चारों ओर कोई सफ़ेद व्यक्ति घूमता हुआ नजर आता है, मैं कुछ नहीं कर पाया हूँ। हम समझ गए परमात्म शक्ति उसके साथ काम कर रही थी। तो बिल्कुल ये बात हमारे सभी राजयोगियों को, दर्शकों को जान लेनी चाहिए। जिसे भगवान साथ दे रहा हो, जिसके साथ ईश्वरीय सत्ता हो, ये मारक मंत्र, ये मूठ, ये तंत्र मंत्र तो पाई पैसे की चीजें हैं। बहुत ज्यादा नशे में आ जाएं सभी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परमात्म शक्तियाँ हमारे पास हैं, हमें डरने की कहीं कोई जरूरत नहीं, ये तंत्र मंत्र तो बच्चों का खेल है। मेरे पास बहुत कहानियां आती हैं, तंत्र मंत्र फेल होते दिखाई देते हैं, लोग निराश होते हैं, कराने वाले क्या हो गया उन्हें क्या पता। जिनके पास पवित्रता का बल हो, जिनके पास योग का बल हो, जिनके पास परमात्म शक्ति हो, ये तंत्र मंत्र तो छोड़ो, प्रकृति भी उनका कुछ नहीं कर सकती। एक बार तो महाकाल को भी पीछे हट जाना पड़ेगा।
बहुत सुंदर बात है प्राता जी। तो ये बहन जिनका आप अनुभव सुना रहे हैं प्राता जी, क्या ये राजयोग का अभ्यास किया करती थी?
ये लंबे समय से राजयोग का अभ्यास कर रही, लोग इनसे बस चिढ़ते थे। संसार में ये गृहस्थियों में बहुत तेरा मेरा, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब बहुत चलता है, एक दूसरे को नष्ट कर देना चाहते हैं। लोग इसका भी बहुत सहारा ले रहे हैं, लेकिन मैं तो सबको यही राय देता हूँ कि ये बहुत बड़ा पाप है। फिर क्या हुआ, हाँ वो बात तो मुझे बतानी है कि ये 3री बार जब मूठ का प्रयोग किया तो ये पहुंच गई उस व्यक्ति पर जिसने कराया था, और उसकी दोनों किडनी फेल कर दी। मैंने कहा अब चखो मजा, और अब फेल ही रहेंगी वो, मृत्यु तक ही पहुंचेगा, मार लो मूठ भगवान के बच्चों को मूठ।
मतलब वो जो कहा जाता है कि खड्ड खोद है जो और को तो को कूप तैयार, कि जैसे हम कर्म करेंगे उसका परिणाम हमें मिलेगा ही। तो यदि हम गलत किसी के लिए करा रहे हैं तो सचमुच ये सबके लिए प्रेरक बात है कि हम किसी के लिए भी ऐसा बुरा ना करें।
और तंत्र मंत्र का प्रयोग करने वालों पे तो ये शक्ति वापिस जाती है, इसलिए मैंने सैकड़ों तांत्रिकों को दुखी होते, कष्ट झेलते, उनके जवान बच्चों की मौत होते हुए देखा है। मैंने कहा रोते रहो, पाप से पैसा कमा रहे थे, पाप कर रहे थे दूसरों के कहने से, तुम्हें पता नहीं मनुष्य का जीवन कितना इम्पोर्टेंट है। तो कर्म का फल तो मनुष्य को भुगतना ही पड़ता है, इसलिए करने वालों को भी सावधान रहना चाहिए कि इस पाप से वो बचें, अब पुण्य करने का समय है। और जिनके पास परमात्म शक्ति है उनको अपने में आत्मविश्वास बढ़ा देना चाहिए, इस ईश्वरीय खुमारी में आ जाना चाहिए, मैं तो ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बट डर मन से निकल जाए तो तांत्रिक शक्ति सब वापिस और सब फेल, बच्चों का खेल।
बिल्कुल, जो तंत्र मंत्र कराते हैं, ऐसी गलत विद्याओं का उपयोग करते हैं किसी को कष्ट देने के लिए, उन्हें भी अंततः कष्ट होता है, ये तो वो भी उस चीज का अनुभव करते हैं। लेकिन मान लीजिए अभी कोई किसी के ऊपर करा रहा है या लगता है कि हम इससे सुरक्षित रहें, इसका प्रभाव हम पे ना पड़े,
मंत्र ले लेना चाहिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सबसे पावरफुल ये स्वमान है, इसको हम मंत्र भी नहीं कहेंगे, ये एक स्मृति है, और इस स्मृति के बल से हमारे चारों ओर एक पावरफुल ओरा बन जाता है, एक पावरफुल आभा मंडल बन जाता है, और जितना ये शक्तिशाली आभा मंडल हम बनाएंगे उतना ही ये बाहर की शक्तियां इससे टकरा कर नष्ट हो जाएंगी या वापिस चल जाएंगी। इसलिए रोज सवेरे एक बार 7 बार ये अभ्यास करके मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ देखना चाहिए, विजुअलाइज करना चाहिए, मेरे चारों ओर एक शक्तिशाली शक्तियों का घेरा बन गया है, मैं इसमें पूर्णतया सुरक्षित हूँ।
बिल्कुल। अच्छा प्रताप जी, जिनके ऊपर ये प्रभाव हो गया है मान लीजिए, अब वो लोग तो कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो एक प्रकार से परवश हो जाते हैं, अब उनके घर वाले या उनके परिजन इस बात से चिंतित रहते हैं कि कैसे इन्हें ठीक किया जाए, तो क्या उनके लिए भी कुछ किया जा सकता
है? उनके लिए भी दूसरे लोग भी योग अभ्यास कर सकते हैं, उन्हें चार्ज किया हुआ पानी पिला सकते हैं, और वो भी अगर करें मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कुछ दिन 108 बार रोज इसका अभ्यास कर लें तो वो असर समाप्त हो जाए।
चूंकि बात निकल पड़ी है तो मैं चर्चा कर रहा हूँ कि एक अभी बीए फाइनल की है जो हमारी बहन है, उनके परिजनों ने ये फोन किया था कि इस बच्ची के ऊपर 2-3 दिन मतलब ऐसा प्रभाव रहता है, फिर ये नॉर्मल हो जाती है, 2-3 दिन ऐसा प्रभाव, तो वो कई बार ये मतलब अपने होश में नहीं रहती, कहती है कि मुझे जला दिया गया था, मुझे इस प्रकार से मारा गया था, अब मैं बदला लूंगी आदि आदि इत्यादि, और वो अपने होश में नहीं रहती है, फिर नॉर्मल हो जाती है। तो परिवार वाले परेशान है कि इसका क्या किया जाए, मतलब क्या है ये, कोई हवा है या कोई इसकी मानसिक परेशानी है, वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं।
नहीं, कोई ऐसी आत्मा जो जिसके साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं वो इसके पास आ जाती है, इसके द्वारा वो कहलाती है। तो इसमें भी योग अभ्यास उस आत्मा की मुक्ति के लिए अगर 21 दिन योग अभ्यास कर लिया जाए 2 स्वमान के साथ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मास्टर मुक्तिदाता हूँ, तो वो भी इफेक्ट समाप्त हो जाए, क्योंकि ये इफेक्ट प्राय अमावस के आसपास हुआ करते हैं लोगों को, उस टाइम पहले से ही इसको ये अभ्यास करा दिया जाए मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। अगर लगता है अमावस एक दिन पहले होता है तो उसे एक दिन पहले से ये अभ्यास 108 बार सारे दिन में कर लें, और साथ में संकल्प भी करें अब ये इफेक्ट मुझ पर होगा ही नहीं। साथ में हमारे पास बैज पहनते हैं ना हम सब छोटा, तो वो अपने बैज को राइट हैंड में ले वे और 21 बार संकल्प करे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो ये बैज चार्ज हो गया, और इस बैज को पहन ले रात दिन, बस फिर कोई भी ऐसा प्रभाव उस पर नहीं होगा।
हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि यदि मेडिटेशन लगातार करते रहें और अच्छा अभ्यास हो, तो आपने सुंदर अनुभव सुनाया कि चाहे कितने भी बड़े तंत्र मंत्र का प्रयोग हो या बुरी दृष्टि वाले लोग हों, लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ता। एक बात और आई रहता है जी ध्यान में कि लोग कई बार कहते हैं कि इसे नज़र लग गई है, तो क्या सचमुच ऐसी नजर लगती है और कई लोग नजर उतारते भी हैं, तो इसमें कहां तक कई लोग अंधविश्वास मानते हैं इस चीज़?
मैंने भी देखा, हम भी नहीं मानते थे, मैंने भी देखा किसी को नजर लगे, मैं कह नजर वजर क्या होती, मैं तो हंसी में कह दिया करता हूँ जिन पे भगवान की नजर लग गई उन पे मनुष्यों की नजर क्या करेगी, फिर भी देखते हैं उनको सिर दर्द हो रहा, परेशानी हो रही, माता ने नजर उतारी, मिर्ची विर्ची जलाई और देखा वो प्रसन्न है, तो मुझे लगा कुछ है तो सही भाई, हम इसको जानते नहीं या मानते नहीं क्या है, पर है तो जरूर। तो फिर मैं इसको इस तरह समझा कि दूसरों के पास से बैड एनर्जी जो मनुष्य के पास आ जाती है और किसी तरह से मनुष्य सेंसिटिव है किसी फील्ड में, उसका मन वीक है, तो ऐसे पर दूसरों के बुरे वाइब्रेशंस का, बुरी दृष्टि का प्रभाव पड़ जाता है। तो ये वाइब्रेशंस का इफेक्ट है, इसलिए अगर मास्टर सर्वशक्तिवान का नशा बढ़ा दिया जाए तो ये इफेक्ट भी बहुत समाप्त हो जाएगा। बाकी होता जरूर है, ये मैंने भी अब मानना पड़ा लोगों का देख देख कर कि पहले वो बड़े परेशान थे और दो मिनट के बाद देखा तो बड़े खुश हो गए हैं, तो लगाए बैड एनर्जी उतर गई। और माताओं का बड़ा, माताएं ये सब जानती हैं, जैसे मान लो किसी को देखा बच्चा बहुत अच्छा है और कोई माता दे हाय ये बड़ा सुंदर बच्चा है, तो जो हाय की तो लगी नजर और माताएं उतारी तो गई नजर, लेकिन भगवान की नजर हम पर पड़ रही है, रोज उसकी दृष्टि लिया करें और ये स्वमान का अभ्यास करें और अपनी पवित्र और पावरफुल नजर सब पे डालें, तो ये छोटी छोटी चीजें भी समाप्त।
इसीलिए हम योग की सुंदर चर्चा कर रहे हैं अमृता जी, और मैं अब आगे चलना चाहूंगा योग की जो गहराई है। कई बार ऐसा होता है कि हम योग के मार्ग पे तो चल पड़े, लेकिन जैसे हम कोई मकान बनाते हैं तो मकान किसी पिलर पे ही खड़ा होता है, तो यदि हम योग का अच्छा अनुभव करना चाहते हैं, अच्छी एकाग्रता चाहते हैं, परमात्मा से अच्छे मिलन की अनुभूति करना चाहते हैं, तो क्या आधार हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मदद करती हैं योग मार्ग में आगे बढ़ने?
एक तो पहली चीज़ तो ये कि हमें इसमें निराश न हो के निरंतर अभ्यास, मान लो किसी को योग अभ्यास में सफलता नहीं हो रही तो वो 3 दिन के लिए हर घंटे में 5 बार अभ्यास कर ले मैं आत्मा हूँ यहाँ, चाहे 5 सेकंड अभ्यास रहे 10 सेकंड रहे, बस अपने आत्मा के स्वरूप को देखें और मैं आत्मा पीसफुल हूँ शांत हूँ, बस 5 बार कर ले तो 1 दिन में ही बड़े अच्छे अनुभव से हम तक हो जाएंगे। दूसरे दिन और बढ़ा दे, ये सारा दिन में 108 बार कर ले, तीसरे दिन भी 108 बार कर ले, तो योग की जो सूक्ष्मता है यानी योग से जो गहन शांति की अनुभूति होती है उसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे कुछ धारणाएं तो परम आवश्यक हैं जिससे हमें योग की गहराई प्राप्त होती रहे, क्योंकि योग संसार की सबसे गुह्यतम विद्या है, इसमें बहुत सूक्ष्मताएं हैं, इसमें संपूर्ण सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान मनोविज्ञान आ जाता है। इसमें हम एक दूसरे के मन के भावों को कैच कर सकते हैं, एक दूसरे के संकल्पों को पकड़ सकते हैं, एक दूसरे के संकल्पों को चेंज कर सकते हैं, उन्हें नई डायरेक्शन भी दे सकते हैं, और जैसा हम चर्चा करते आ रहे अनेक जगह हम अपने वाइब्रेशंस फैलाकर संसार के लिए भी बड़ा सुख देने वाला कार्य कर सकते हैं
जी।
तो कुछ धारणाओं में पहली धारणा तो देखिए प्योरिटी है, भले ही कई लोग हमारी ये बात सुन के थोड़ा सा नेगेटिवली भी लेते हैं, नाराज भी होते हैं कि ब्रह्मा कुमारियों ने ये क्या नया पवित्रता का मार्ग निकाल दिया, लेकिन हम कहना चाहेंगे ब्रह्मा कुमारियों ने नहीं निकाला, ये भगवान का आदेश हुआ है कि मुझे इस संसार को पवित्र बनाना है, इसलिए हर एक पवित्रता को धारण करे। तो हम आजकल देख रहे हैं कि हमारे इस राजयोग के मार्ग पर अनेक कुमार और कुमारियां, युवक यंग एज के लोग बहुत आ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों में तो इम्प्योरिटी बहुत है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं युवक जिनमें पवित्रता भी बहुत है, वो आकर्षित होकर आ रहे हैं राजयोग की ओर। मुझे बहुत मिलते हैं, कल भी बहुत लोग मिले, कन्याएं मिली जिनकी चर्चा पवित्रता पर ही थी, जिनका बहुत ध्यान था अपनी प्योरिटी पर, और जो दृढ़ संकल्पधारी थे कि हमें किसी भी तरह कुछ भी सहन करना पड़े पवित्र जीवन व्यतीत करना ही है, तो ये भगवान की आज्ञा है। तो इसके बिना कोई योगी नहीं बन सकता
जी।
क्योंकि योग उससे लगाना है जो परम पवित्र है, योग उससे लगाना है जो पवित्रता का सागर है, जो संपूर्ण है, तो हमें योग लगाने के लिए स्वयं को पवित्र अवश्य बनाना होगा। बिना पवित्रता के हम उसे याद तो कर सकते हैं पर योग नहीं लग सकता, बुद्धि एकाग्र नहीं हो सकती, क्योंकि पवित्रता से ही ब्रेन को शक्तियां मिलती हैं, ब्रेन एनर्जेटिक होता है।
कल ही एक फोन आया था इसी के संदर्भ में, तो उनका फोन कॉल ये था कि क्या यदि हम पवित्र नहीं रह पा रहे हैं तो क्या हम भगवान को याद नहीं कर सकते और क्या भगवान की शक्तियां, भगवान का आशीर्वाद हमें प्राप्त नहीं होगा?
देखिए, याद भी कर सकते हैं, आशीर्वाद भी मिल जाएगा, लेकिन जो योग में एकाग्रता हो और ईश्वरीय शक्तियां हमें मिले वो बहुत कम मिलेंगी। प्योरिटी इसलिए योगी का महत्वपूर्ण पिलर है। इसके बिना अध्यात्म है ही नहीं, अध्यात्म का अर्थ ही है पवित्रता का मार्ग।
लेकिन कई बार भ्राता जी ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को शक्तिहीन महसूस कर रहे हैं या हमें अपने साथी से वो सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है, तो यदि मैं याद करता जा रहा हूँ और उसका मुझे बल प्राप्त होता जा रहा है तो वो फिर मुझे मदद करेगा पवित्र?
देखिए, इसमें थोड़ा समय लग जाएगा कि याद करते 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 पवित्र रहने का बल आ जाएगा। कईयों के साथ ये भी हुआ है, कोई एक साल में पवित्रता को धारण किए, किसी ने दो साल में किए, किसी ने छह मास में किए, लेकिन शक्तिशाली और महान आत्माएं वही होती हैं जो तत्काल कर लेती हैं। उनके अंदर ये पवित्रता एक बहुत बड़ी शक्ति और वरदान के रूप में काम करने लगता है और इससे बहुत कुछ होने लगता है।
बिल्कुल, तो पवित्रता एक आधार हो गया प्रताप जी, इसी प्रकार की और किन्हीं बातों पर?
दूसरी चीज ध्यान रखने की है, पवित्र भोजन। जी, पवित्र भोजन में लहसुन प्याज भी नहीं, बहुत ज्यादा लाल मिर्च भी नहीं, और एक पवित्र और सात्विक वातावरण में बनाया हुआ अन्न, एक पवित्र और सात्विक व्यक्ति के द्वारा बनाया गया अन्न हमारे योग अभ्यास को बहुत सरल कर देता है, हमें सूक्ष्म स्थिति में ले चलता है। तो इसका भी हमें बहुत ध्यान रखना है। लोग ये भी सोचते हैं कि लहसुन प्याज तो दवाइयां हैं, आयुर्वेदिक चीजें हैं, इससे क्या होगा? देखिए, इससे मनुष्य की कामुक वृत्तियां उत्तेजित होती हैं और हमें बनना ही पवित्र है तो हम इन चीजों का सेवन नहीं कर सकते। तो अन्न, जैसा अन्न वैसा मन। हम जानते हैं कि देवताओं को अगर हमें भोग लगाना हो तो हम लहसुन प्याज नहीं डालेंगे, हम अंडे का भोग नहीं लगा सकेंगे। देवताओं को भी पवित्र भोग लगाया जाता है। आजकल लोग जो मान्यता हो गई देवियों को बलि चढ़ाने की, ये बिल्कुल गलत परंपरा है। इससे न देवी खुश होती, न स्वयं मनुष्य खुश होता, न उसको सफलता मिलती। ये कुछ सिद्धि प्राप्त करने वालों ने चालू कर दिया तंत्र मंत्र का प्रयोग, लोगों ने ये मान लिया, पर ये भी एब्सोल्युटली परमात्मा की आज्ञा के विपरीत बात हो जाती है। किसी का शुद्ध मन नहीं है, शुद्ध अन्न नहीं है, अन्न अच्छे वातावरण में नहीं बनाया गया तो उसकी एकाग्रता पर असर अवश्य आएगा।
बिल्कुल, मतलब भोजन की शुद्ध सात्विकता पर भी विशेष करके ध्यान दिया जाए और मांसाहार आदि तो बिल्कुल वर्जित ही है योगियों के लिए। हाँ। क्योंकि यदि हम किसी को कहते हैं कि जीवन नहीं दे सकते तो किसी का जीवन हम लेंगे। अब ब्रह्म जी, एक विशेष बात जो ये अन्न की शुद्धि के बारे में बात आती है लोगों की कि चलो हम घर में ही रह करके भोजन बनाएं, शुद्धता उसमें रहती है, लेकिन मान लीजिए जब कभी बाहर जाना पड़ता है वहां उनको भोजन की बहुत दिक्कतें आती हैं, उन्हें जो भी मिलता है वही चीज ले लेते हैं, ऐसे समय पर फिर क्या किया जाए?
ये समस्या बहुतों के सामने आजकल आ ही रही है और घरों में भी आ रही है, क्योंकि राजयोग के मार्ग पे चलने वाला तो एक दो होगा और मान लो बहुत बुजुर्ग व्यक्ति भी है, वो भोजन बना भी नहीं सकता, उसके बच्चे बहू भी अलाउ नहीं करेंगे कि तुम भोजन बनाओ। हाँ। लोग भी हंसेंगे, बूढ़ा हो गया, 80 साल का भोजन बना रहा है। तो इसमें ये है, और घरों में ये है कि 10 लोगों का इकट्ठा परिवार है, एक व्यक्ति ज्ञान मार्ग पर चल रहा है, उसको भी कठिनाई होती है। तो इसमें किसी संघर्ष को हम न सामने लाकर भोजन बने, एक तो भोजन बनाने वालों को सिखाएं भाई अच्छे वाइब्रेशंस में भोजन बनाना है, शुद्ध मन से भोजन बनाना है। ऐसे नहीं लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है तो भोजन बन रहा है, टीवी भी देख रहे हैं भोजन बन रहा है, या पर चिंतन तेरा मेरा भी कर रहे हैं और भोजन बन रहा है, उससे भोजन पे निगेटिव इफेक्ट आएगा। लेकिन भोजन भी अच्छे सात्विक वातावरण में बनाए, सभी माताओं को जानना चाहिए वो भोजन जो बहुत प्यार से और भगवान की याद में बनाया जाता है। चलो कोई योग न भी करता हो, भगवान की याद में बनाएंगे, हम तुम्हारे लिए भोजन बना रहे हैं तो अच्छे विचार रहेंगे, ऐसा भोजन मनुष्य को बहुत बल देता है। तो जो ऐसा नहीं खा सकते वो भोजन को दृष्टि दें, बहुत अच्छी तरह ही अभ्यास करेंगे, 7 बार अभ्यास कर दें मैं परम पवित्र आत्मा हूं। तो आंखों से पवित्र किरणें भोजन में समा जाएंगी और कोई भी इम्प्योर वाइब्रेशंस उसमें होगा वो निकल जाएगा और उस भोजन को हम स्वीकार करें।
जी जी, लेकिन यदि घर में भी ऐसे लहसुन प्याज या ऐसे मांसाहार आदि का जब सेवन किया जा रहा हो, ऐसे में जो बर्तन आदि है या उनका जो वाइब्रेशन है वो भी क्या इफेक्ट डालता है बेटे जी?
देखिए, ये बहुत सूक्ष्म बात हो गई। अगर किसी को योग साधना में बहुत सूक्ष्मता तक पहुंचना है और भगवान को भी भोग लगाना है
जी,
तो उसे ये बर्तन यूज नहीं करने होंगे। लेकिन किसी को खुद ही खाना है तो उन भोजन बर्तनों को साफ करके वो अपना भोजन बना सकते हैं, लेकिन भगवान को इसमें भोग नहीं लगाया जा सकता।
जी जी जी, तो भ्राता जी ये तो दो बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं, चाहे वो पवित्रता की बात है, भोजन की बात है, ऐसे ही क्या कुछ अन्य आधार भी हो सकते
हैं? हाँ, और भी बहुत सारे आधार हैं। देखिए, हमें सत्संग के द्वारा अपने विचारों को भी बहुत शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि एकाग्रता तो विचारों की एकाग्रता ही होगी। अगर मन बहुत भटकता रहा तो एकाग्रता होगी नहीं, योग में आनंद आएगा नहीं। इसलिए रोज ईश्वरीय ज्ञान का श्रवण करना, उसका अध्ययन करना, इसकी बहुत आवश्यकता है। उससे क्या होता है, रोज ही हमारे विचार बदलेंगे, रोज नई नई चीजें हमें मिलेंगी। कोई विकृति हमारे अंदर आ गई हो, कोई बाह्य चीजों का इफेक्ट आ गया हो, उससे भी हम मुक्त हो जाएंगे। तो इस पर भी बहुत ध्यान देना, साथ में सत साहित्य का अध्ययन, जिससे हमारे विचारों की शुद्धि बनी रहे। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें कुछ विशेष गुणों पर बहुत ध्यान देना चाहिए, जैसे अंतर्मुखता।
जी,
हम बहुत कम बोलेंगे। कई लोग बड़े वाचाल होते हैं, सारा दिन बोलते ही रहते हैं, बिना मतलब भी बोलते रहते हैं, कोई छोटी बात हुई तो बोलते ही रहते हैं, डांटते रहते हैं, ऐसे में मन एकाग्र नहीं होगा। डांट डपट करना, क्रोध करना, ये विकार होंगे तो भी मन एकाग्र नहीं होगा। लक्ष्य केंद्रित हम करें एकाग्रता पर। तो कुछ ऐसे गुण, दूसरों को सुख देने का गुण, दूसरों से अच्छे वचन बोलने का, अपने घर में खुशी का माहौल बनाने का गुण, ये सब गुण हम लाएंगे। सरल चित, इजी नेचर बनाने का गुण, ये सब गुण हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो हमारी एकाग्रता बहुत अच्छी होगी और उसका इफेक्ट हमारे योग अभ्यास पर बहुत अच्छा होगा। फिर बार बार अभ्यास करने से हमारी अनुभूतियां गहन होती जाएंगी।
बहुत सुंदर बात है प्रताप जी, क्योंकि हम कई बार सोचते हैं कि बस हम योग में बैठे और हमारा योग एकदम परफेक्ट हो जाए, बस भगवान की याद में हम टिक जाए, लेकिन शायद इन आधारों की ओर हम कम ध्यान देते हैं और जब तक आधार मजबूत नहीं है तो लगता है कि इमारत तो खड़ी हो ही नहीं सकती। आपने सत्संग की बात कही है भ्राता जी, मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा, सत्संग अर्थात क्या?
देखिए, सत्संग बाहर भी गुरु लोग कराते हैं
जी,
कथाएं चलती हैं, रामायण की कथा, भागवत की कथा, शिव पुराण चलता है, वो भी अच्छी चीजें हैं, लेकिन उसमें लोग सोते रहते हैं, बात करते रहते हैं, बीड़ी सिगरेट भी पीते रहते हैं, कुछ सुना कुछ नहीं सुना, वहां उस तरह का माहौल नहीं होता कि ज्ञान दिया जा रहा हो। हमारे सेवा केंद्रों पर सवेरे ईश्वरीय ज्ञान की क्लास होती है, कहीं 6:30 होती है, कहीं 6 भी होती है, कहीं 5:30 भी होती है, लेट करने वाले 7 भी करते हैं, दिन में भी क्लासेज होती हैं, इवनिंग में भी होती हैं। वहाँ आप क्लास में बैठिए, ईश्वरीय महावाक्य सुनाए जाते हैं, वातावरण में एकदम अलौकिकता रहती है, सबका चित्र एकाग्र होता है, वहां से कुछ लेकर मनुष्य आता है रोज, तो ज्ञान उससे भरता है हमारी बुद्धि में।
बिल्कुल, और भ्राता जी, क्या सत्संग का एक भाव ये भी है कि हम अपने संघ का भी ध्यान रखें, क्योंकि कहा जाता है कि अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही और सी कीप्स, तो जब संघ में हम रहते हैं तो संघ का भी शायद बहुत ज्यादा इफेक्ट हमारे ऊपर?
बिल्कुल, बहुत ज्यादा क्या, संपूर्ण रूप से पड़ता ही है, क्योंकि फ्रेंड सर्किल कईयों का ऐसा होता है वो सारा दिन गपशप करेंगे, पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, कभी कुछ केस आ गए अखबारों में उनकी चर्चा कर रहे हैं, कभी कुछ और व्यर्थ की बातें तेरी मेरी में लगे हुए हैं, उससे मनुष्य का मन डाइवर्ट होता है। फिर कुछ ऐसे संगी साथी मिल जाते हैं, कोई स्मोकिंग कर रहे हैं, कोई स्मैक ले रहे हैं, अरे पढ़ के क्या करोगे, देख लिया तुम्हें कौन सा लाट साहब बनना है, चलो चलो पिक्चर देख,
इसका भी आनंद लेके देखो,
इसका भी आनंद, ये सब क्या है, ये पीछे देखा जाएगा, जा रहे पिक्चर्स देखने, क्रिकेट चले छोड़ो चलो गेम देखते हैं या खेलते हैं। ये संघ भी जो मनुष्य को बुराइयां सिखा दे, जो कुरीतियों में डाल दे, जो उनके मन को निगेटिविटी की ओर डाइवर्ट कर दे, ऐसे संघ को भी छोड़ देना ही एक योग अभ्यासी के लिए बहुत बड़ी चीज और परम आवश्यक होता है।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर व्रता जी, आपने पूरे आधार स्पष्ट किए हैं और मुझे लगता है कि जो योग के मार्ग में आप चलने के इच्छुक हैं उन्हें इस पर जरूर चिंतन करना चाहिए कि पवित्रता कितना इम्पोर्टेंट है, शुद्ध भोजन कितना इम्पोर्टेंट है, या सत्संग, एक तो क्लास भी सुनना जो अच्छी बातें सुनाई जा रही हैं वो, और साथ ही अपने संघ का भी ध्यान रखना, और दिव्य गुणों के भी आपने बहुत सुंदर चर्चा की है व्रता जी। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने बहुत सारी चीज़ें आप सभी को दी हैं। मुझे लगता है सारे दिन सभी बहुत गहराई से इस पर चिंतन करेंगे ताकि आगे जब हम योग के मार्ग पर बढ़ें तो उन सबको बहुत मदद मिले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, कहा जाता है, संघ की बात भ्राता जी कह रहे थे तो मुझे एक बात याद आ रही थी, एक पानी का बूंद जब सागर में गिरता है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वही बूंद जब किसी सांप के मुख में गिरता है तो वो विष का रूप ले लेता है, और वही बूंद जब किसी सीप में जाता है, गिरता है तो वो मोती बन जाता है। पानी का बूंद एक ही है लेकिन अलग अलग स्थानों पे जाने से उसका अस्तित्व कहीं नष्ट हो गया, कहीं वो विष बन गया और कहीं पे वो मोती बन गया। हमें भी ध्यान रखना है कि यदि हमें अच्छा साधक बनना है, अच्छा योगी बनना है, अच्छा इंसान बनना है तो हमें भी संघ का जरूर ध्यान रखना है। तो इन आधारों पर आप सुंदर विचार कीजिएगा ताकि योग के मार्ग पर आप सहज रूप से चल सकें, आगे बढ़ सकें। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।